الحمد لله الحمد لله على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم سلام على خير الأنام والسيدي حبيبي إله العالمين محمدي بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد کیا شان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق نے عطا کی سروری معراج سے دی برتری بلغ العلا بکمالی ہی تکلیف بھی اس نے سہی تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی حسنت جمیع خصالی ہی ایک دھوم سی دنیا میں مچی آواز یہ آنے لگی پڑھ لو درود امتی صلو علیہ وآلہ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی وسلم بزرگان محترم اور عزیز دینی بھائیوں نوجوانوں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں میں نے 18ویں پارے کے سورہ مؤمنون کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مختصر وقت میں مجھے کام کی بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بزرگو یہ آیت پاک جو ہے جس میں اللہ تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہم سب کے آقا تاجدار بدحا سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کو سارے پیغمبروں کو سارے رسولوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ساری انسانیت کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. وہ بہت عجیب ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسولوں کی جماعت، اے پیغمبروں کی جماعت، اے نبیوں کی جماعت، سب سے پہلی چیز جس کا حکم اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو دے رہے ہیں، سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ میں جانے والا لقمہ روزی حلال کرو، پاک کرو، صاف کرو سارے نبیوں کو. اس کے بعد اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خیرات ہے، سب ہے، لیکن پہلا اسٹیپ نبیوں کو دیا گیا حلال روزی کا. حلال روزی کا کلو من الطیبات، یہ پہلی. وَاعْمَلُوا صَالِحًا پہلا نہیں ہے، پہلا کلو من الطیبات، एंड देन वामल सालिहा। मालूम क्या हुआ, क्या आप हजारों नेकियां करें लेकिन अगर हलाल रोजी नहीं है तो काबिले कबूल नहीं। मेरे भाइयों, एक सोसाइटी और एक समाज और एक मुआशरा और एक फैमिली की लाइफ की तरक्की और कामयाबी, और उस मुआशरा उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब रोजी और कमाई हलाल और पाकीजा रखी जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा असर की नमाज मदीने पाक में आपने पढ़ाई, और आप जो है असर के बाद सारे अजवाज मुतहरात के यहां थोड़ी थोड़ी देर जाते थे, हमारी सबकी माएं, हमारे नबी की बीवियों के घर, और हर एक से पूछते थे कि कोई जरूरत का सामान हो तो मैं बाजार से ला के दूं। तो आप जब निकले तो एक साहबी अपने खेत से मजदूरी करके अपने घर आ रहे थे। साहबे किराम खेतों में मजदूरी किया करते थे। उस साहबी के हाथ में खेती का सामान था, कुल्हाड़ी थी, उनके कपड़े पूरा दिन काम करके गंदे हो गए थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तीन मरतबा सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया कि हमने आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ नबी जी, मैंने आपका सलाम तो सुना लेकिन मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया कि मेरे हाथ गंदे थे, मेरे कपड़े गंदे थे, मैं मजदूरी करके खेत से आ रहा था, मैंने ऐसा समझा कि मेरे हाथ की वजह से कहीं तुम्हारा हाथ गंदा ना हो जाए, मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मेरी वजह से मेरे नबी को कोई तकलीफ हो, क्योंकि मैं मजदूरी करके पूरा थक चुका था, मेरे बदन से पसीना आ रहा था, मेरे कपड़े गंदे थे, मेरे हाथ गंदे थे, इसलिए मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया। मेरे भाइयों, उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहि सलातु वस्सलाम को वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और कहा कि नबी जी, जिन्होंने जिनको आपने सलाम किया है, जो सहाबी सुबह से शाम तक अपने घर की, अपने घर वालों की, अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए, हलाल रोजी की कमाई के लिए मेहनत कर रहा था, जिसको आपने सलाम किया है, अल्लाह पाक उससे इतने खुश हैं, इतने खुश है कि आप खाली उससे मुलाकात नहीं बल्कि उसके गले लग जाओ, उसके गले लग जाओ। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नबी जी, मुझे अल्लाह ने भेजा है, क्या आप उस सहाबी से कहो कि अल्लाह तुम्हारी इस बात से इतने पसंद है कि तुम्हारे घर जाने से पहले तुम जिसके लिए भी मगफिरत की दुआ करोगे, तुम्हारी हलाल रोजी की मेहनत की बुनियाद पर, तुम्हारी मेहनत की बुनियाद पर अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाएगा। बहुत बड़ी दौलत है हाथ से कमाई करना, बहुत मेहनत, बहुत बड़ा बड़ी इबादत है। बल्कि इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तो तफसीर में यहां तक लिखा है कि बाज गुनाह ऐसे हैं कि जब इंसान हलाल रोजी करके थकता है, पसीना होता है, मेहनत करता है, उसको उसका बदन जो है थक जाता है, अल्लाह उसके सदके में उसके गुनाह को माफ कर दिया करते हैं। अजीज भाइयों, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहयाउल उलूम में बहुत अच्छी बात लिखी है। हजरत फरमाते हैं कि जब बंदा कोई हराम रोजी अपने पेट में डालता है, जब तक वो रोजी उसके, वो खाना उसके पेट में रहा और उससे जो कुछ खून बनना था बना, जो टॉनिक बनना था, जो कैलोरी, जो उसके जिस्म में ताकत बननी थी वो बनी, जब तक वो खून उसके बदन में रहेगा उस वक्त तक उसको चैन नहीं आएगा जब तक कि वो कोई गुनाह ना कर ले। वो चाहे कि ना चाहे, वो कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो, जब तक उस हराम रोजी का खून उसके पेट और बदन में रहेगा उस वक्त तक उसको चैन ही नहीं आ सकता जब तक कि वो कोई गुनाह ना कर ले, उसकी नहुसत हराम रोजी की, उसकी नहुसत। और अगर कोई हलाल रोजी है, कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन हलाल रोजी खाई है, जब तक उसके बदन में वो खून रहेगा उस वक्त तक उसको चैन नहीं आएगा जब तक कि कोई नेकी का काम ना कर ले। वहां नीचे लिखा है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कि एक बंदा 40 साल तक, 50 साल तक नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है, लेकिन जो कपड़ा पहनकर, जो जुब्बा पहनकर मस्जिद में आता है, अगर उसका 1% भी अगर हराम है, $100 में से समझो कि $5 भी हराम का है, जिसमें बहन का हिस्सा है, जिसमें भाई का हिस्सा है, जिसमें अमानत में खयानत की गई है, अगर ऐसा है 40 साल तक वो सजदे करता रहा, एक सजदा भी काबिल कबूल नहीं। सारी इबादत का निचोड़, सारे इस्लाम का खुलासा मेरे भाइयों, हलाल रोजी है, बहुत बड़ी चीज है ये चीज फकत मुसलमानों में नहीं, कुफ्फारे मक्का भी उसको अच्छी तरह समझते थे। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की हुई, 35 ईयर्स, जब आप अभी नबुवत नहीं मिली थी, अभी आपको रसूल नहीं बनाया था, अभी आप पर कुरान नहीं उतरा था, 35 साल की उम्र हुई, काबतुल्लाह की इमारत कमजोर हो गई थी, तो मशवरा किया गया कि भाई काम करो, हम जो है काबतुल्लाह की तामीर नए से करें। तो जो है एक जनरल मीटिंग बुलाई गई और कुरैश आपस में बैठे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे, तो मशवरे में यह तय हुआ कि भाई हम अल्लाह का घर बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास तो रोजी बहुत, पैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन एक नियत और एक जजमेंट ये करके हम उठे कि अल्लाह के घर बनाने में कोई भी हराम की रोजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो भी देगा मस्जिद बनाने में हलाल रोजी देगा। तो बहुत मेहनत की, बहुत दिन पैसे उन्होंने जमा किए, लेकिन इतना पैसा हलाल जमा नहीं हुआ जिससे पूरा काबतुल्ला तामीर हो जाए। तो अब क्या करें, तो कुछ लोगों ने मशवरा भी दिया कि अब क्या करें, हम मेहनत तो कर चुके हैं लेकिन इतना पैसा हलाल नहीं है। तो मशवरे में हम सब के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबतुल्ला आधा बनेगा, यह हमें मंजूर है, आधा हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन अल्लाह के घर बनाने में हम हराम रोजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। काबतुल्ला जो लोग गए हैं बार बार, अल्लाह उनको जियारत की तौफीक नसीब फरमाए। हतीम का जो हिस्सा है, ये असल काबतुल्ला ही का हिस्सा है, लेकिन इतना हिस्सा जो छोड़ दिया गया है, जो हम तवाफ करते हैं तो हतीम को लेकर तवाफ करते हैं, ये उसी जमाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बनने में छोड़ दिया गया था कि इनके पास हलाल रोजी नहीं थी। वो कुफार और मुशरिकीन समझते थे कि हराम रोजी का असर कितना भारी होता है। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाइयों, एक मरतबा असर के बाद एक जो है अपनी बीवियों में से एक बीवी के पास गए और कहा कि घर में कोई चीज हो तो मैं लेकर आऊं बाजार से। उन्होंने कहा कि अनाज नहीं है घर में खाने के लिए, आप बाजार गए। वो दुकान मुसलमान की थी, आपको बहुत उन्होंने भावताल किया और अनाज पसंद आ गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इतना वजन करके दे दो। वो वजन करने लगे, वो थैले में से अनाज निकाल कर वजन करने लगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ थैले के अंदर डाला। तो बाज दुकानदार ये करते हैं कि जो है लोगों को दिखाने के लिए ऊपर ऊपर चीज अच्छे रखते हैं और अंदर जो है घटिया और दो नंबर का, जिसके अंदर जो है माल अच्छा ना हो। ऊपर गेहूं अच्छे थे, ऊपर चावल अच्छे थे, अंदर माल थोड़ा बिगड़ा हुआ था, पानी वाला था। वो तो वजन कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात समझ में आ गई कि ये दिखा रहा है कोई और दे रहा है दूसरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरी उम्मत के साथ धोखा कर रहा है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को देखा कि जब ये मेरे साथ ये मामला हो रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम बुखारी ने उस हदीस को नकल फरमाया है कि मन गश्शना फलैस मिन्ना, कि जिसने मेरी उम्मत के साथ धोखा किया, दिखा रहा है अच्छा माल और दे रहा है दूसरा। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन मेरे भाइयों, सबसे बड़ी चीज अगर हम अपनी औलाद को ईमान पर बाकी रखना चाहते हैं, हम अपने घरों में सुकून डालना चाहते हैं, हम अपने आप को ईमान के साथ इस दुनिया से जाना चाहते हैं, अगर हम अपने रब को राजी करना चाहते हैं, तो ये 100% मानना पड़ेगा कि मेरे और आपके पेट में हलाल रोजी जानी चाहिए। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। आंखों में देखने की ताकत, कानों में सुनने की ताकत, जबान में पकड़ने की ताकत, पैरों में चलने की ताकत हलाल रोजी से आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी गुस्से हो गए, आपकी ये रग मुबारक लाल लाल हो गई, और आपने वो फरमाया मन गश्शना फलैस मिन्ना, जिसने मेरी उम्मत के साथ धोखा किया वो मेरा नहीं हो सकता, वो किसी और का हो सकता है। मेरे भाइयों कितनी बड़ी चीज है। एक दुकानदार भाई हरेक के साथ लगा हुआ है। अल्लाह पाक हमें हलाल और पाकीजा और आफियत वाली रोजी नसीब फरमाए। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे, मालूम है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के गए थे, अपना घर बार सब छोड़ के गए थे। जब मदीना हिजरत करके गए तो पहले जो लोग ईमान ले आए थे अंसारी, उन दोनों के दरमियान हमारे नबी ने भाईचारे के, ये तुम्हारा भाई है, क्योंकि ये सब छोड़ के आए थे अल्लाह के लिए। तो हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, मदीने में जिसके घर में मुझे रखा था वो उसके माँ बाप अलग थे, मेरे माँ बाप अलग थे, तो उसने मुझे यूं कहा कि मेरा और आपका रिश्ता अगरचे भाई का नहीं है, हकीकी भाई का नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भाई बनाया है, तो मैं आज से अपनी आधी मिल्कत का मालिक तुम्हें बनाता हूँ। मेरी दो बीवियां हैं, एक को तलाक देता हूँ, इद्दत गुजर जाए आप उससे निकाह कर लेना, और मेरी सारी मिल्कत का आधा हिस्सा आपको देता हूँ। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं, मेरे बाजू में कमाने की ताकत है, मेरे पैरों में चलने की ताकत है, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं, मुझे मदीने में बाजार का रास्ता बता दो, मैं खुद मेहनत करके पसीना बहा के टाइम लगा के अपने फैमिली की हलाल रोजी का बंदोबस्त करूंगा, मैं बैठे बैठे खाने के काबिल नहीं हूं। उनको मिल रहा था, खुदा की कसम ये मजमा उलमा मौजूद है। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुर्रहमान पहले दिन मदीने के बाजार में गए थे, उनका कारोबार कोई सोने चांदी का नहीं था, दूध और दही बेचा करते थे। हजरत अब्दुर्रहमान उन 10 सहाबा में से एक है कि जिन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 10-10 जन्नती है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला ने मदीने में दूध बेचा करते थे, मदीने में दही बेचा करते थे। आखिरी बात सुनाता हूं, जिस वक्त उनका इंतकाल होता है और उनकी विरासत तकसीम हुई तो सोना और चांदी इतना छोड़ा था कि काटते काटते उनकी आरियां टूट गई थी, हजारों हजारों माल छोड़ के मरे थे मेरे भाइयों। उनकी 4 बीवियां थी और कितनों के हिस्सों में लाखों का माल आया। हलाल रोजी की बरकत ये होती है। अल्लाह पाक हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए, मुझे और पूरी उम्मत को हराम की रोजी से अल्लाह पूरे पूरी हिफाजत फरमाए। एक आखिरी बात मेरे भाइयों, हम सब जिसके फॉलोवर भी हैं, 4 इमामों में के में एक इमाम हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बहुत बड़ी तिजारत थी कपड़ों की, तो वो वीक में एक मरतबा जो है सारा हिसाब लेने के लिए अपनी दुकान पर जाया करते थे। एक मरतबा दुकान पर गए तो उन्होंने देखा कि जो कपड़े थे उसमें एक कपड़ा कहीं से फटा हुआ था, तो उन्होंने नौकर से कहा कि भाई देखो ये कपड़ा फैक्ट्री से फट कर आया है, जब तू किसी ग्राहक को बेचे तो पहले से बता देना कि ये कपड़ा फटा हुआ है और उसको आधी कीमत में दे देना, धोखा करके नहीं कि कपड़ा बहुत अच्छा है, फटी हुई चीज तू बतावे नहीं तो ये तो मेरे लिए हराम हो जाएगा, तू जिसको भी बेचे ये बता देना कि ये कपड़ा यहां से फटा हुआ है, आधी कीमत में दे देना। चुनांचे इमाम साहब कुछ दिनों के बाद जब अपनी दुकान पर पहुंचे तो देखा कि वो कपड़ा नहीं था अलमारी में। पूछा नौकर से कहां गया, तो कहा कि वो तो हजरत मैंने बेच दिया। तो फरमाया तुमने उसको बताया था कि कपड़ा फटा, फरमाया मैं तो बिल्कुल भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहा कि, और अब वो जमाना कैमरे का था नहीं कि भाई उसको बुलाए और बातचीत हो, मैंने पूरी पूरी कीमत ले ली, मैं बताना भूल गया। इमाम साहब बहुत रोए, तो उस नौकर ने कहा कि मैंने 4 आने ज्यादा लिए हैं, आप इतने पैसे निकाल कर सदका कर दो। तो उन्होंने कहा कि बात 4 आने की नहीं है, वो औरत के साथ धोखा हुआ है, वो घर लेकर जाएगी, वो देखेगी कि कपड़ा फटा हुआ है, उसके दिल पर जो चोट आएगी उसका बदला मैं कैसे पूरा करूंगा। और मेरे भाइयों सरकार नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि जो कोई मुसलमान अपनी चीज बेचने से पहले, कोई दुकानदार अपनी चीज के बेचने से पहले उसका जो फॉल्ट है, उसका जो ऐब है, वो ग्राहक को बता दे कि भाई ये मकान तू ले रहा है, ये मोबाइल तू ले रहा है, ये जो तू जो ले रहा है इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि थोड़ी कीमत कम मिले, हो सकता है कि ग्राहक चला जाए, लेकिन इस सच बोलने की बुनियाद पर, ये सच बोलने की बुनियाद पर इसका फायदा यह होगा कि जिंदगी भर अल्लाह तबारक व ताला उसको बड़ी बीमारी से हिफाजत करेंगे। ये चीज हमें आज समझ में नहीं आ रही है। चुनांचे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से उस नौकर ने कहा कि काम करो, थोड़ा सा सदका निकाल दो। इमाम साहब ने कहा मसला सदका निकालने का नहीं है, वो 4 आना जो अंदर डाल के गई है उसका रुपया और उसका पैसा कौन सा है मुझे पता नहीं है, उस दिन का जितनी कमाई थी शायद वो 50,000 दिरहम थे, दिरहम चांदी के सिक्के को बोलते हैं, 50,000 दिरहम 4 आने के बदले में, कि उस उम्मत उस औरत के साथ मेरा धोखा हुआ है, फटा हुआ कपड़ा धोखे के साथ मैंने दे दिया है, कल खुदा के यहां मैं उसका क्या जवाब दूंगा? मेरे लिए कहना आसान है भाई, आपके लिए सुनना आसान है, लेकिन इस वक्त हम दुआ करें कि अल्लाह हमें तू जिस हाल में रख, हलाल और पाकीज़ा रोजी नसीब फरमा। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ भी मुझे याद आती है, अल्लाहुम्मा इक्फिना बिहलालिका अन हरामिक वग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ए अल्लाह, जितनी हलाल रोजी तू मुझे अता फरमाए उसमें मुझे तो कनात अता फरमा, उसमें तू मुझे सुकून अता फरमा। अपनी औलाद को, मेरे भाइयों, हम ये चाहते हैं कि इस्लाम पर उसकी मौत आए, ईमान पर अल्लाह उसको जिंदगी नसीब फरमाए। खुदारा अपनी औलाद पर रहम खाओ और उसको हराम से बचाकर हलाल रोजी नसीब करो। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी उसके ऊपर खूब अमल की तौफीक अता फरमाए। माफी के साथ कह रहा हूँ मेरे भाइयों, अगर कोई ऐसी बात हुई हो जो आप में से किसी इंसान के दिल को ठेस पहुंचे, अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमाए, अल्लाह आपको भी माफ़ फरमाए। वाखिर दुआ।